जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। 그 시간. 브리지 바시오네 भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार गोवर्धन गाय और ब्राह्मण इन तीनों की पूजा की और फिर बड़े हर्षित अवस्था में घर लौट गए। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र बहुत कुपित हो गए क्योंकि वो सोच रहे थे कि ब्रजवासियों ने मेरे लिए जो यज्ञ सामग्री एकत्र किए थे वो इस बालक ने सब खराब कर दिया और मेरी उपासना होने के बजाय गोवर्धन की पूजा हो गई, तो इसलिए ये ठीक नहीं हुआ। तो शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन करते हैं इंद्र के विचारों का, और ये है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का 25वां अध्याय। श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं। श्री शुक उवाच इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितानि नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च गोपः। इंद्र तदा उस समय इंद्र आत्मनः पूजं विज्ञाय विहितां जब अपनी पूजा विहितां जब किसी दूसरी जगह चले गई और उनकी पूजा नहीं हुई विज्ञाय जब भी इंद्र ने जान लिया तो क्या हुआ गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नंदादिभ्यः चुकोप मतलब बहुत कुपित हो गए, उनको कोप आ गया, उनको गुस्सा आ गया। किनके ऊपर गोपेभ्यः सारे कोपों के ऊपर बहुवचन है। कृष्णनाथेभ्यः मतलब उनके ऊपर जिन्होंने कि श्री कृष्ण को अपना नाच माना है ऐसे गोपों के ऊपर नंद आदि गोपों के ऊपर तो इंद्र बहुत ही क्रोधित हो गए। देखिए क्रोध कभी कभी इस दुनिया में आवश्यक होता है, परंतु केवल भगवान की सेवा के लिए तब उचित कहलाता है। अधिकतर ये दुनिया में देखा जाता है कि लोग क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध के वश में आ जाते हैं अहंकार की वजह से। जब अहंकार चुभ जाता है बहुत दर्द होता है और उस समय व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। जब उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं उस समय वो क्रोधित हो जाता है। ध्यायत विषयां पुंसः संगत पेशु पचायते संगात संजायते कामा क्रोधो विजायते। तो जब हमारी काम वासनाएं हमारी संसार की भोग करने की अनंत इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती हैं या कोई इनमें बाधा डाल देता है तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। तो इसी प्रकार से इंद्र का सम्मान होने जा रहा था, इंद्र की उपासना होने वाली थी और अचानक ही बालक बीच में आ गया और उसने सारा मजाक किया कर दिया तो इंद्रदेव को बड़ा गुस्सा आया। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र के लिए क्रोध का प्रयोग किया, लंका को तहस नहस कर डाला। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्रोध का प्रयोग किया। प्रभुपाद जी भी कभी कभी क्रोधित हुआ करते थे शिष्यों के ऊपर जब वो कोई गलती करते थे या किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कुछ अनाप शनाप कुछ ऐसे सिद्धांत बोलता जो कि बिल्कुल गलत था लेकिन अहंकार के लिए या इंद्रिय तृप्ति में बाधा हो गई, इसलिए गुस्सा होना ये ठीक नहीं है, इससे हम पतित हो जाते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अनेक ऐसे असुरों के मान को भंग किया था। जितने भी असुर भगवान श्री कृष्ण के सामने आए थे, उन सब के अंदर ही अहंकार की भावना थी, और भगवान ने इनके अहंकार को चूर कर दिया। अनेक बार ऐसे होना पड़ा कि श्री कृष्ण को उनको मार डालना पड़ा, उनकी हत्या, उनका वध करना पड़ा, परंतु कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ने केवल उनके अहंकार की हत्या कर दी और उनके शरीर की हत्या नहीं की। केशव काश्मीरी नाम के बहुत बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे कि वो दिग्विजयी पंडित कहलाते थे। सारे दिशाओं में उन्होंने सारे पंडितों को वाद में, तर्क में हरा दिया था। उनसे बड़ा कोई विद्वान सारे देश में नहीं था। उन्होंने सुना कि नवद्वीप में बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण हैं, तो अगर वास्तव में मुझे दिग्विजयी होना है तो मुझे नवद्वीप में जाके ब्राह्मणों को हराना चाहिए, फिर वास्तव में मैं दिग्विजयी हो जाऊंगा। तो वहां जब पहुंचे तो नवद्वीप के ब्राह्मणों ने उनके बारे में बहुत पहले से ही सुन लिया था, तो सारे पंडित जो है इधर उधर नवद्वीप छोड़ के चले गए। कोई कहने लगा कि मेरे रिश्तेदार की शादी है दूसरे शहर में, कोई कहने लगा कि मैं बीमार हूं, किसी ने कुछ बहाना बनाया, ऐसे अनेक बहाने बनाकर सब चले गए। केशव कश्मीरी ने सुना था कि यहां हमने सुना है कि एक लड़का है, केवल 15-16 साल का बच्चा है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, निमाई पंडित है उसका नाम, तो चलो निमाई पंडित के सामने जाके देखते हैं कि भला कितना विद्वान है। तो केशव कश्मीरी चलते चलते आए गंगा के तट पर, वहां देखा कि निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे हैं अपने शिष्यों के साथ में, उस समय थे केवल 16 साल के। और केशव कश्मीरी बोलने लगे, अच्छा तो तुम हो निमाई पंडित, हमने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, हमने सुना है कि तुम तो एक व्याकरण के अध्यापक हो, व्याकरण मतलब बहुत निम्न श्रेणी का। वो कहना चाह रहे थे कि मैं तो अलंकार, नाट्य शास्त्र, काव्य, ऐसे इन शास्त्रों में मैं प्रवीण हूं, और तुम तो केवल व्याकरण के हो, निम्न श्रेणी के हो, अभी तक बच्चे हो, ऐसे कहने का तात्पर्य था। तो निमाई ने उत्तर दिया, हाँ आप तो बड़े पंडित हैं, मैं तो आपके सामने बिल्कुल बच्चा ही हूं, तो मैं आपके साथ क्या बात करूंगा, क्या तर्क करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके विद्वत्ता का, आपके पांडित्य का लाभ लेना चाहता हूं, तो कृपया आप कोई सुंदर कविता की रचना कीजिए गंगा जी की प्रशंसा में। तो केशव कश्मीरी ने दो चार क्षण विचार किए और फिर वैसे ही यूं ही उसी स्थान पे एक के बाद एक उनके मुख से गंगा जी की प्रशंसा में स्तोत्र निकले, एक के बाद एक श्लोक निकलते गए जिनकी रचना वो उसी समय कर रहे थे। और जैसे गंगोत्री से गंगा बहती है, वैसे केशव काश्मीरी के मुख से ये श्लोक गंगा की प्रशंसा में बहने लगे, एक के बाद एक 100 श्लोक बोले गए एक घंटे में, और सभी लोग चकाचौंध रह गए कि ऐसे भी कोई संभव है कोई मनुष्य के लिए, ये तो मनुष्य नहीं, ये तो कुछ अद्भुत है। फिर निमाई पंडित ने कहा, बहुत बढ़िया, आप तो वास्तव में बहुत ही बड़े विद्वान हैं। अच्छा ये बताइए, मुझे एक श्लोक के अंदर जो आपके दोष हैं और अच्छे गुण हैं वो मैं सुनना चाहता हूं। तो केशव कश्मीर में दोष और मेरे रचना में, मेरी रचना में तो कोई दोष नहीं हो सकता, अच्छे गुण तो हैं, दोष तो नहीं है। फिर भी किस श्लोक की बात कर रहे हो? तो फिर निमाई पंडित ने उनमें से एक श्लोक चुना और उसको फिर से दोहरा दिया। केशव कश्मीरी को आश्चर्य लगा कि अरे, मैंने तो बहते हुए तूफान की तरह इन श्लोकों का उच्चारण किया और इस बच्चे को ये श्लोक याद कैसे रहेंगे? और ठीक है, हाँ तो बोलो। तो कहने कहा, आपके श्लोक के अंदर पांच अच्छे गुण हैं, तो उनको गुण क्या थे वो बताएं, लेकिन पांच दोष भी हैं और पांच दोष क्या थे वो भी बताएं। ये बहुत सुंदर कथा है, हम संक्षेप में बता रहे हैं। और जब इस प्रकार से विश्लेषण करके निमाय पंडित ने केशव कश्मीरी को उस एक श्लोक के गुण और दोष बताए और अंत में कहा कि इस एक श्लोक में अनंत दोष हैं, मैंने केवल पांच दोष बताए हैं, केशव कश्मीरी बिल्कुल निरुत्तर रह गए, निर्वचन हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वो सोच रहे थे क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं, जो मुख से कुछ नहीं निकल रहा था, बुद्धि बिल्कुल खाली हो गई। कभी कभी ऐसे होता है ना, खासकर कभी कभी विद्यार्थियों को परीक्षा का समय हो जाता है, या जब भक्त प्रवचन देने बैठ जाते हैं तो कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो खैर, तो केशव कश्मीरी हार गए, पूरी तरह से हार गए, लेकिन निमाय पंडित सज्जन थे तो उन्होंने अपमानित नहीं किया केशव कश्मीरी को, बड़े सम्मान से आदर पूर्वक उनको अपने घर भेजा, कहा अब आराम से विश्राम करके आइए, कल आगे हम चर्चा और करेंगे। तो केशव कश्मीरी घर में गए और वो तो सरस्वती देवी के उपासक थे और सरस्वती देवी के मंत्र का उच्चारण करके प्रार्थना करने लगे, हे देवी, मैंने क्या अपराध आपसे किया है कि आज मेरा इस प्रकार से अपमान आपने करवाया, वो भी एक छोटे से बच्चे के द्वारा, बताइए मैंने क्या किया है। तो फिर माता सरस्वती आई और कहा कि सुनो, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम हारे हो निमाय पंडित के सामने, ये कौन है, कोई साधारण लड़के नहीं है, ये तो मेरे आराध्य देव हैं, ये परम सत्य भगवान हैं, तो जाओ उनके शरण में जाओ। फिर उसके बाद केशव कश्मीरी अगले दिन आके निमाय पंडित के शरण में आए और उनका जीवन सफल हो गया। जिस प्रकार से केशव कश्मीरी के घमंड को चूर कर दिया था, लेकिन शरीर का नाश नहीं किया, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने अनेकों को किया था। तो यहां अब इंद्रदेव का क्रोध, इंद्रदेव का घमंड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हम आगे चल के देखते हैं कि किसी ऊंचे पद को पाना एक कितना कितने खतरे की बात होती है, कि व्यक्ति एक बार सबक सीखने के बाद भी दोबारा वही गलती कर बैठता है। अब जब इंद्रदेव का मान भंग हुआ कृष्ण भगवान कृष्ण के गोवर्धन धारण करने के फलस्वरूप, बस थोड़े ही वर्ष बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को ले जाना चाहा स्वर्गलोक से, स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती से, नंदन कानन से, तो इंद्रदेव ने विरोध किया। वहां श्री कृष्ण के साथ इंद्र ने युद्ध किया, वही इंद्र भूल गए। तो देखिए, पद ऐश्वर्य आदि ये खतरे होते हैं। तो अगर कोई बहुत दुखी है कि मेरे पास पद नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई संसार में प्रसिद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर किसी के पास है और अगर आप अच्छी तरह से भगवान कृष्ण के दास के रूप में आपकी सारी संपत्ति, आपका यश, आपकी बुद्धि, आपका बल कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। तो इंद्रदेव को जब गुस्सा आया तो उन्होंने अपने बादलों से आदेश किया। वैसे इंद्रदेव के पद से अनेक लोग गिर चुके हैं पहले भी अपराध करने के प्रति। नहुष नाम के एक राजा थे जो थोड़े समय के लिए इंद्र के पद में आए थे, जब इंद्र को कुछ श्राप मिला था और नहुष को अहंकार हो गया था, और इस पालकी में बैठे हुए जब उन्होंने ऋषियों को पालकी धारण करने के लिए आदेश दिया था, उन्होंने अपने पैरों से एक ऋषि के कंधे पे लात मारा था, तो उनको सांप का जन्म लेना पड़ा राजा नहुष को। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो खैर, इंद्र को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने की विशेष रूप से, तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, गणम सांवत्तकम नाम मेघानाम च अंतकारिणम इंद्र प्रचोदय क्रुद्धो वाक्यम चावेश मान्युत। गणम सांवत्तकम, गण मतलब वृंद समूह, तो सांवत्तक नाम के जो बादल हैं उनका समूह, उनको बुलाया, मेघानाम च अंतकारिणम। और ये बादल जो होते हैं विशेष करके संसार के अंत के समय आते हैं, संसार का संहार जब होना होता है उस समय इनका अपमान किया जाता है। तो इन बादलों को बुलाया इंद्र ने समय से पहले, अब तो पहले का समय तो नहीं था, तो इंद्रदेव ने इनको बुलाया। इंद्र प्रचोदया क्रुद्धो वाक्यम च अह ईशमानी उतर। तो इंद्रदेव को देखा कि वो बहुत क्रुद्ध हैं, बहुत क्रोधित हो गए हैं, और वाक्यम च इह ईशमानी, और अपने आप को ईशमानी ईश समझ कर कि मैं भगवान हूं, मैं नियंता हूं, यह समझकर इंद्रदेव ने बुलाया बादलों को। तो ये दुनिया की बड़ी बीमारी है, क्या है? ईशमानी। हम सब अपने आप को ईश मानते हैं, मैं कुछ हूं। और जब व्यक्ति ज्यादा प्रसिद्ध होता है और उसको वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी अपेक्षा वो करता है, तो उसको बहुत दुख होता है। यहाँ भारत में टेलीविजन के ऊपर एक ऐसे कोई आध्यात्मिक सिनेमा दिखाया करते थे हर हफ्ते, उसमें एक अभिनेता थे जिन्होंने कृष्ण की भूमिका निभाई थी। तो एक बार विदेश में हमारे इस्कॉन के केंद्र में वो गए, और जब मंदिर में प्रवेश किया उन्होंने, तो वहाँ थोड़े भक्त लोग बैठे थे, सब सेवा कर रहे थे, कुछ उत्सव आने वाला था, थोड़ी माताएं बैठ के फूल माला कर रही थी, थोड़े बाकी भक्त लोग कुछ और कर रहे थे, सभी लोग बैठ के अलग अलग सेवा कर रहे थे। तो जब ये अंदर आए तो उन्होंने देखा कि कोई मेरी ओर देख भी नहीं रहा है। जब भारत में सड़क में जाते थे तो लोग, सैकड़ों लोग पीछे पड़ जाते थे, लोग उनके ऑटोग्राफ लेते थे उनकी, और जाके पीछे उनके फोटो लेते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन यहाँ पर कोई देख भी नहीं रहा है, और सब अपने सेवा में लगे हुए, सिर उठा के कोई देख नहीं रहे। तो वो सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा थोड़ी जोर से आवाज में कहा, आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, क्योंकि कृष्ण की भूमिका, वो कहना चाहते हैं मैं कृष्ण की भूमिका निभा, तो मैं कृष्ण हूँ, और आप नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। तो देखिए, अगर साधारण आदमी अंदर आता मंदिर में तो उसे कोई दुख नहीं होता ना कि उसका सम्मान नहीं किया गया है, लेकिन अभी ऊंचा पद मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, बहुत कुछ मिल गया, और इस समय जब वो मान सम्मान नहीं मिलता तो कितना दुख। ईश मानिए, हम सब अपने आप को ऐसा कुछ विशेष मानते हैं, परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि हम विशेष नहीं हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजनों के द्वारा हम सबको सिखलाते हैं कि हमें कैसे सोचना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर भगवान श्री कृष्ण से, श्री गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, मोसम पतित प्रभु ना पाई गया है, कि मुझसे ज्यादा पतित व्यक्ति आप नहीं पाओगे, आप पतित पावन अवतार हैं, पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन आपकी कृपा के सबसे पहले नंबर का पात्र मैं हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पतित हूं। तो ये भक्तों की भावना होती है, लेकिन कभी कभी भक्त इस बात को भूल जाते हैं। अहो श्री मद महात्म्यम गोपनम काननौकसम कृष्ण मत्यम उपाश्रित्य ये चक्रु देवहेलनम। तो इंद्रदेव कहने लगे, अहो अरे देखो तो, श्रीमद महात्म्यम, श्री मतलब ऐश्वर्य, मद मतलब घमंड पागलपन, महात्म्य मतलब कितना ज्यादा। तो देखो तो गोपा नाम कानन औकसम, कानन मतलब वन, औकसा मतलब रहने वाले, ये जंगल में रहने वाले ब्रजवासियों के घमंड को तो देखो, क्योंकि उनके पास थोड़ा ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य से देखो कितना घमंड हो गया, कितने पागल हो गए हैं। कृष्ण मत्य उपाश्रित्य, एक साधारण बच्चा मत्य लोक का, कृष्ण इसका आश्रय इन्होंने लिया है, इस लोक को मत्य लोक कहते हैं, क्योंकि यहां सभी लोग बहुत कम आयु में, ये सब लोगों की कम आयु होती है और बहुत ही शीघ्र मृत्यु आती है, मृत्यु निश्चित है, और देवलोक में जीवन की अवधि बहुत लंबी होती है, लाखों वर्ष पृथ्वी की आयु के तुलना में। तो इंद्रदेव कह रहे हैं, मैं देव हूं, देवों का राजा हूं, मुझे छोड़कर ये एक साधारण पृथ्वीलोक के बच्चे के आश्रय को स्वीकार कर चुके हैं, ये चक्र देव हेलनम, इसलिए इन्होंने देवताओं के प्रति अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। तो देखिए कभी कभी देवता जो भी भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, अवजानंति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अवजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो जब ये देवताओं की बात ऐसी होती है तो असुर जब भगवान को पहचान नहीं सकते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। देवताओं में असुरों में अंतर ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण कृपा बरसाते हैं देवताओं के ऊपर, उनका मान भंग करते हैं, तो देवतागण जो है उनको बहुत पछतावा होता है और श्री कृष्ण के शरण में पुनः चले आते हैं, परंतु असुर अंत तक नहीं करते, जैसे हिरण्यकश्यप रावण आदि अंत तक मृत्यु होने के तक भी उन्होंने शरण नहीं ग्रहण की, जिद होता है कि हम श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे, भगवान को नहीं मानेंगे। दुर्योधन भी प्रभुपाद जी ऐसे छोटी सी एक छोटे सा चुटकुला बताया करते थे कि दो आदमी थे, दोनों के बीच में वाद हुआ, विषय था कि इस चीज के लिए कैंची सही है या चाकू, एक कहने लगा कैंची, दूसरा नहीं चाकू, कैंची चाकू कैंची चाकू। तो बात बढ़ती गई और मुक्का पढ़ा दोनों के बीच में हुआ, अंततः है एक व्यक्ति ने जो कह रहा था चाकू वो ज्यादा मजबूत शक्तिशाली था, तो उसने दूसरे आदमी को उठाया और नदी में फेंक दिया, तो वो बेचारा आदमी तैरना नहीं जानता था, वो डूब रहा था पानी में नीचे जा रहा था, लेकिन फिर भी डूबते डूबते वो ऐसे हाथ दिखा रहा, मैं कैंची कैंची मर जाऊंगा लेकिन कैंची ही है सही, चाकू नहीं कैंची। तो अब देखेंगे जब भी श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं असुरों का वध करने के लिए तो अंत तक असुर माने नहीं है, भगवान उनकी हत्या करनी ही पड़ी, परंतु देवतागण कभी कभी पथभ्रष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन उनके होश भगवान की कृपा से जल्दी ठिकाने आ जाते हैं। फिर इंद्रदेव भी सही मार्ग पर आ गए, परंतु शुद्धिकरण के लिए उनको बहुत कुछ अभी देखना था, अभी आगे चल के। तो फिर आगे यथा दृढ़ कर्ममय ही कृतभिर नाम नवमी निभाई विद्याम आन्वीक्षिकीं हित्वा तितिर्षन्ति भवार्णवम्। अरे देखो ये लोग जो कृष्ण के का आश्रय ले रहे हैं ये ऐसे हैं कि मानो कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान को त्याग कर कर्म कांड के जो कमजोर नौके में बैठ कर भवसागर को पार करना चाहते हैं, कभी ऐसे संभव है नहीं है, ऐसे इंद्र कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्ण का शरण लेना मतलब दिव्य ज्ञान को त्याग कर कर्म कांड का आश्रय लेना, तुलना कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण भगवान को छोड़कर देवताओं का आश्रय लेना ये मूर्खता है भगवद गीता के अनुसार। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करके देवताओं को शरण ग्रहण करके इस भवसागर को पार करना चाहता है उसका प्रयास ऐसे है कि जैसे एक व्यक्ति का जो कि एक कुत्ते के दुम को पकड़ता है और सोचता है कि ये कुत्ता तैर के मुझे समुद्र पार करके ले जाएगा। क्या ये संभव है? एक कुत्ता अकेला बेचारा वो समुद्र पार कर पाएगा? गोवा से दुबई जाएगा कैसे हो? और एक आदमी उसकी पूछ पकड़ के जाए वो भी जाएगा दुबई? संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से कर्मकांड या देवताओं का शरण ग्रहण करने से कोई लाभ नहीं होगा। ब्रह्मा जी स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं समाश तये पद पल्लव प्लवम महत्पुणम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवान बुधि विपत्त पदम 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 यद पदाम तेषां। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करता है तो उसके लिए ये भवसागर जो कि वास्तव में बहुत विशाल है ये बहुत छोटा बन जाता है। कितना छोटा बन जाता है? जैसे कि एक गाय के बछड़े के खुर के नीचे थोड़ी सी थोड़ा सा पानी रह जाता है उतना पानी हो जाता है, जो कि लांघने के लिए बहुत आसान है। ये दुनिया पदम पदम यद विपदाम न देशा, इसमें पद पद में विपद है, ये ऐसी दुनिया है, हर पल पे संकट है, खतरा है यहाँ पर। परंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करता है वो आसानी से ही इस संकट में दुनिया को पार करके जा सकता है। परंतु इंद्र अभी तक इस बात को जाने नहीं है, भूले हैं। फिर बड़े गुस्से में इंद्र कहने लगे, क्या इंद्र ने कहा? आइए अभी पढ़ते हैं। वाचालं बालिशं तद्धं अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यं उपाश्रित्य गोपामे चक्रुरप्रियं वाचालं बालिशं तद्धं अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यं उपाश्रित्य गोपामे चक्रुरप्रियं वाचालं बालिशं तद्धं अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यं उपाश्रित्य गोपामे चक्रुरप्रियं। इंद्र कह रहे हैं बालिशं तद्धं अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्त्यं उपाश्रित्य गोपामे चक्रुरप्रियं। तो इंद्र देव यहां कह रहे हैं कृष्ण के बारे में, बड़े क्रोध में है इंद्रदेव कृष्ण के बारे में। क्या कह रहे हैं? वाचालम, बहुत ज्यादा बात करता है, जरूरत से ज्यादा बात करने वाला है, अधिक बहुत अधिक बात करता है, बड़बड़िया है। बालिशम, ये तो बच्चा है। क्यों बच्चा है? बच्चा तो है ही, लेकिन साथ साथ में उसकी ज्ञान, उसका ज्ञान जो है वो भी बहुत कम है, अल्प ज्ञान का है, इसीलिए अज्ञम। स्तब्धम भी है, स्तब्धम मतलब बहुत घमंड है उसको। क्यों घमंड है? क्योंकि बुजुर्गों के सामने, अपने बड़ों के सामने उसने ऐसे तर्क प्रस्तुत किए। बड़ों के सामने ऐसे इस प्रकार से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन है तो ये छोटा बच्चा, लेकिन देखो बड़ों के सामने कैसे उसने व्यवहार किया, और है तो एक साधारण ग्वाल बाल, उसको क्या पता, अज्ञानी है, अज्ञम, और पंडित मानिनम, अपने को पंडित मानता है, अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानता है। कृष्णम मर्त्यम, मर्त्य लोक का एक निवासी है, साधारण मनुष्य है, मैं तो देव हूं। उपाश्रित्य गोपा में, तो गोप गोपगणों ने ऐसे श्री कृष्ण का आश्रय लिया है, चक्रूर अप्रियम, और मेरे प्रति अपराध किया है। तो इस प्रकार से इंद्रदेव को बड़ा गुस्सा आया और ऐसे श्री कृष्ण की निंदा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, तो भगवान श्री कृष्ण को हमारी प्रशंसा और हमारी निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हम भगवान की प्रशंसा करें तो इसमें भगवान को कोई फायदा नहीं है, अगर हम भगवान की निंदा करते हैं तो भगवान का कोई नुकसान नहीं है इसमें। अगर हम सूरज की ओर देख के ऊपर देख के झुकते हैं, क्या होगा, किसका नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा। ये सूरज कैसा है, छी नुकसान, कैसा सूरज है, सूरज को कुछ होने वाला नहीं है, सूरज अपने स्थान में है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने से भगवान को कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा हमें ही होगा। और जितना ज्यादा हम भगवान के प्रति ऐसे द्वेष करेंगे, उतनी ही तीव्रता से प्रतिकार होगा। सरस्वती देवी भगवान कृष्ण की भक्त है, बड़े कृपालु है, तो वो सोच रही है कि इंद्र ने बहुत कुछ कह दिया जो बहुत गलत है, अब इन शब्दों को मुझे श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करना है, लेकिन मैं अर्थ बदल के करूंगी। तो सरस्वती देवी कहती हैं कि वास्तव में वाचालम, वाचालम का मतलब है कि जो बहुत ही प्रवीण है बात करने में, बहुत मीठी तरह से बोलता है, ये है श्री कृष्ण। बालिशम, बालिशम मतलब बहुत मासूम है, एक छोटे बच्चे की तरह, उसमें छल कपट की भावना कुछ नहीं है। स्तब्धम, इसका मतलब है कि वो किसी को प्रणाम में नमस्कार इसलिए नहीं करता कि कोई उसके नमस्कार स्वीकार करने के लिए योग्य है ही नहीं, क्योंकि वो तो सबसे बड़े हैं। और दूसरे अज्ञम, अज्ञम मतलब कि ऐसे जानने के लिए उनके लिए कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। पंडित मानिनम, जो पंडित लोग हैं उनको बहुत मानते हैं, पंडित मानिनम। और मर्त्यम और कृष्णम, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक है, और मर्त्यम इसका मतलब है कि यहां वो सबका उद्धार करने के लिए मृत्यु लोक में आए हैं। तो इस प्रकार से सरस्वती देवी ने बड़ी कृपा से इंद्रदेव के गालियों को, इंद्रदेव के द्वेष भरे शब्दों को बदल के कृष्ण के चरणों में अर्पण किया। इसी प्रकार का एक प्रसंग चैतन्य चरितामृत में आता है, प्रसंग बहुत लंबा है, इसलिए संक्षेप में ही कहेंगे कि एक बार एक ब्राह्मण बंगाल से आए जगन्नाथपुरी में, और भक्तों से उन्होंने कहा कि मैंने एक नाट्य लिखा है, एक नाटक लिखा है, तो आप कृपया इस नाटक को सुनिए। तो भगवान आचार्य नाम के एक भक्त थे महाप्रभु के, तो बहुत इच्छुक थे सुनने के लिए, उन्होंने थोड़े भक्तों को बुला लिया, और भक्तों ने वाह के वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु भी इस नाटक को सुने, परंतु चैतन्य महाप्रभु सीधे किसी भी कविता को, नाटक को, ग्रंथ को, श्लोक को नहीं सुनते थे, जब तक कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको पहले नहीं सुनते थे या पढ़ते थे, क्योंकि महाप्रभु गलत सिद्धांतों के ऐसे साहित्य नहीं पढ़ना पसंद करते थे, विशेष करके जिनमें रसों का आभास हो, रसाभास हो। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास गए भगवान आचार्य कि अरे मेरे पास एक ब्राह्मण है, उन्होंने बहुत सुंदर नाटक लिखा है, तो आप कृपया सुनिए और अगर आप ठीक समझते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को हम जाके सुनाएंगे। स्वरूप दामोदर ने कहा, अरे तुम तो बहुत भोले भाले ब्राह्मण हो, जैसे वैसे कवि वगैरह जो भी आते हैं सबकी बातें सुन लेते हो, सब जगह जाके सब कुछ सुन लेते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि ऐसे वैसे कवि जो है जिनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है वो ऐसे ही कुछ लिख देते हैं जिसमें रसाभास होता है, जो अपर सिद्धांत होता है, सही सिद्धांत के विरुद्ध होता है। लेकिन फिर भी भगवान आचार्य से बार बार निवेदन करने पर फिर स्वरूप दामोदर तैयार हो गए, ठीक है चलो सुन लेते हैं। तो ब्राह्मण ने अपनी कविता सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला श्लोक कह दिया, सबसे पहले श्लोक सुनकर सारे भक्त लोग वाह वाह साधु 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 कह रहे हैं। केवल स्वरूप दामोदर प्रशंसा नहीं कर रहे। अच्छा ये बताइए कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो ब्राह्मण कहने लगे, इस श्लोक का अर्थ ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम सत्य हैं, गौर वर्णीय हैं, और वो आए हैं और इस अचेतन दारु रूप जिनका नाम जगन्नाथ है उनको चेतन कर दिया है। तो ये गौरांग महाप्रभु इस अचेतन जगन्नाथ के प्राण बने हैं, उनके आत्मा बने हैं। तो सारे भक्त वाह 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 कहने लगे। तो स्वरूप दामोदर कहने लगे, अरे तुम बड़े मूर्ख हो, सभी लोग हैं ये क्या हो गया। कहने लगे, हाँ तुम नहीं जानते, देह देही विभागोयम ईश्वर इन्हेश्वरे पचित विभागोयम। तो ये जो देह और देही का भेद है ईश्वर में नहीं है, हमारे शरीर और हमारे आत्मा में अंतर है, लेकिन भगवान और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। बहुत बड़ी गलती तुमने की है। और वैसे भी जगन्नाथ कोई अचेतन दारू नहीं है, वो तो साक्षात परब्रह्म है, ये भगवान का विग्रह है जो कि भगवान से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु में और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, दोनों श्री कृष्ण है। तो ऐसे कई बातें स्वरूप दामोदर गोस्वामी कही। और फिर कहने लगे, जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण को बहुत पछतावा हुआ था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, तो स्वरूप दामोदर को कृपा हुई, उन्हें कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे वचनों को सरस्वती देवी ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अर्थ बदल के अर्पण किया है। जैसे जरासंध ने श्री कृष्ण को कहा पुरुष अधम, कि पुरुषों में से सबसे नीच हो तुम, लेकिन सरस्वती देवी ने क्या किया, कहा कि पुरुष अधम जिनके नीचे सब पुरुष हैं, मतलब वो सबसे ऊंचे हैं, मतलब वो पुरुषोत्तम है। तो सरस्वती देवी ने पुरुष अधम का मतलब पुरुषोत्तम करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। फिर जरासंध ने कृष्ण को और एक अपशब्द कहा, बंधु हन, कि अपने रिश्तेदारों की हत्या की इस कृष्ण ने। कौन थे वो रिश्तेदार? कंस, उनके मामा थे। और कंस का और जरासंध का संबंध क्या था? कंस की पत्नी जरासंध की बेटी थी। तो जरासंध को देखा कि मेरे दामाद की मृत्यु इस कृष्ण ने कराई और कृष्ण बंधु हन है, अपने रिश्तेदारों की हत्या करने वाला है। तो फिर सरस्वती देवी ने कहा कि बंधु का मतलब ये भी होता है मित्र, मित्र मतलब जो हमेशा हमारे साथ में रहता है। तो इस भौतिक दुनिया में रहते हुए कौन हमारे साथ में हमेशा है? आत्मा के साथ में माया। तो माया हमारी बंधु है। तो भगवान श्री कृष्ण माया को नष्ट करने वाले हैं। तो वास्तव में जरासंध श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं कि माया का विनाश करने वाले हैं। इस प्रकार से सरस्वती देवी ने जरासंध की वाणी को कुछ सुधार के, उसका मतलब बदल के कृष्ण भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। उसी प्रकार से शिशुपाल ने जितने सारी गालियां भगवान श्री कृष्ण को दी थी उन सबको सरस्वती देवी ने थोड़ा अर्थ बदल के भगवान को अर्पित किया। तो खैर इंद्रदेव ऐसे बोले जा रहे थे, हम कल्पना नहीं कर सकते कि देवराज भी ऐसा सोचेंगे। लेकिन देखिए कितना खतरा होता है ऊंचे पद को प्राप्त करने से। फिर इंद्रदेव ने उन सामर्थक बादलों से कहा, एषाम श्रिया अवलिप्तानाम कृष्णेन अधमाप्त आत्मानम दुनोत श्रीमद स्तंभम पशून नयत संशयम। तो देखो श्रिया अवलिप्तानाम, उनके ऐश्वर्य से अवलिप्त हैं ये लोग, पागल हो गए हैं, तो जाओ और उनके श्रीमद स्तंभम पशून नयत संशयम, तो उनके ऐश्वर्य से उत्पन्न जो घमंड है उसका नाश करो। ये ब्रजवासी गण साधारण गांव के निवासी थे, लेकिन उनका ऐश्वर्य इतना था कि इंद्रदेव भी इस ऐश्वर्य को देख के आश्चर्यचकित हो गए। तो ये सोचने की बात है कि केवल गवों का देखभाल करने से ब्रजवासियों का ऐश्वर्य इंद्र से अधिक हो गया था। कल्पना कीजिए, केवल दूध दही गोबर गौमूत्र घी आदि से इतना ऐश्वर्य इतनी समृद्धि हो सकती है समाज में कि इंद्रदेव भी ईर्ष्या करने लगते हैं। ये आजकल के लिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत सीखने लायक याद रखने लायक बात है। इस जमाने में जबकि कतल खाने जगह जगह पाए जाते हैं, जबकि भारतवर्ष में भी गाय का मांस जो है देश के बाहर भेजा जाता है, सारे पृथ्वी में भारत पहले नंबर पर है गाय के मांस को बेचने में और चमड़ी के सारे पदार्थों में। तो देखिए गाय और कृषि के ऊपर जो सभ्यता है वो समृद्धिपूर्ण होती है। यहां पर इंद्रदेव इस बात को समझ रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐश्वर्य इनके इतना ज्यादा है इसलिए घमंड हो गया। और तुम आगे चलो, अहम च ऐरावतम नागम आहूय अनुव्रजे व्रजम, आप लोग जाओ, मैं ऐरावत मेरे हाथी के ऊपर सवार होकर आपके पीछे पीछे ब्रज में जाऊंगा। ब्रज मतलब वो स्थान जहां गाय जाते हैं, गाय चरते हैं, तो गोचरण भूमि को ब्रज कहते हैं। तो सारी ब्रज भूमि क्या है, वो भूमि है जहां श्री कृष्ण के प्रिय गाय चरते हैं। मरु गणय महावे गए नंद गोष्ठ जिघां सया, और साथ साथ को लेकर गए मरु गणेर जो पवन के देवता थे और जो बहुत वेगवान थे, महावेग उनको साथ लेके गए वृंदावन का नाश करने के लिए। तो वहां समय से पहले अपने बंधन से मुक्त हो गए ये सामर्थक बादल, और फिर बहुत मूसलधार वर्षा बहाने लगे। मेघा निर्मुक्ता बंधना नंद गोकुलम आतारे ही पीड़ायाम असुरोजसा, तो नंद गोकुल के ऊपर बहुत वर्षा होने लगी, साथ साथ बहुत तेज हवा भी होने लगी, और इतना होने लगा कि क्या ऊंचा है और क्या नीचे है ये समझना मुश्किल हो गया था। पानी ही पानी सब जगह हो गया था और बादलों की गड़गड़ाहट गर्जना, उधर बिजली चमक रही थी और तूफान के समान तूफान के हवा जो है इतनी तेजी से बह रही थी, साथ साथ बर्फ के टुकड़े भी गिर रहे थे, बड़े बड़े टुकड़े। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्थूल स्थूल वर्ष धारा, कि बड़े बड़े स्थूल मतलब बड़े बड़े स्थूल मतलब खंभे, बारिश बूंद रूप में नहीं गिर रहे थे, खंभों के रूप में गिर रहे थे। कभी कभी ऐसे देखा जाता है हिमालय में, आज भी इसको ऐसा कहते हैं कि बादल फट गए हैं, क्लाउड बर्स्ट कहते हैं इसको, वो साधारण वर्षा नहीं होती है, वो बादल जो खंभे के समान गिरते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि सामर्थक पर्वत जब आए जो कि प्रलय के समय के लिए होते हैं, तो बरसात खंभों में गिर रही थी, पानी के खंभे, केवल बूंद नहीं। तो समझ लीजिए कि क्या दशा हुई होगी वहां पर। तो सारे वहां पर पशु प्राणी ब्रजवासी बहुत पीड़ित हो गए, पीड़ित अवस्था में सब कांपने लगे, इधर उधर भागने लगे, जहां कहां जाएं कि भी सब जगह जल ही जल। गोविंदम शरणम ययुः, अंततः एक ही स्थान था उनके लिए जाने के लिए, आश्रय के लिए, और वो है श्री गोविंद के शरण में। कृष्ण कृष्ण महाभाग वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुम अर्हति देवान्नः कुपितार्भक्तवत्सलः। कृष्ण कृष्ण महाभागा
कृष्ण कृष्ण महाभागा
वन्नाथं गोकुलं प्रभो
वन्नाथं गोकुलं प्रभो
त्रातुम अर्हति देवान्नः महाभाग्यवान कृष्ण। स्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, स्वन्नाथम हे कृष्ण, आप ही स्वयं आपके नाथ हैं, आपके और दूसरे कोई नाथ नहीं है, आप सबके नाथ हैं। स्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम, इस गोकुल की, इस गोकुल की मतलब गौओं के समूह की, ब्रजवासियों की रक्षा करना। अर्हति देवान कुपिता भक्तवत्सल, आप भक्तवत्सल हैं, भक्तों की पर बहुत कृपा करते हैं। और अभी देवराज इंद्र देवान कुपिता हम सब की पर बहुत कुपित हो गए हैं, तो कृपया हमें बचाइए। उनको याद आया कि भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय गंध मुनि ने कहा था, अनेन सर्वदुर्गाणी यूयम अंजस्तरिष्यतः। सर्वदुर्गाणी मतलब सारी जो समस्याएं बाधाएं रुकावटें आएंगी जीवन में, ये जो बच्चा है आपको इनको पार करा देगा। तो ब्रजवासियों को अनुभव था कि इतने सारे कठिनाइयां हुई थी, लेकिन कृष्ण ने चमत्कार कर दिए थे। जब दावानल हो गया था, दो बार कृष्ण ने उस अग्नि को निगल लिया था। जब बड़े बड़े असुर आए थे, कृष्ण ने या तो उनकी हत्या कर दी थी या दमन कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्रजवासी भक्तियों को देखा। शिला वर्षाति वातेन हन्यमानम अचेतनम, कि जो बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े थे, वर्षा थी, अति वातेन बहुत तीव्र पवन बह रहा था, हन्यमानम इसे वो प्रहार हो रहा था ब्रजवासियों के ऊपर, और वो प्राय अचेतन हो गए थे। निरीक्ष्य भगवान ने देखा, निरीक्ष्य भगवान ने कुपित इंद्र कृतम हरि, और भगवान ने सोचा कि ये तो इंद्र का काम है जो अभी बहुत क्रोधित हो गए हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, क्योंकि मैंने इंद्रदेव का यज्ञ रुकवाया, इसलिए श्री इंद्र ने ऐसा काम किया है। फिर भगवान श्री कृष्ण सोचते थे कि मुझे कुछ करना चाहिए। तत्र प्रतिविधिं सम्यक् आत्मयोगेन साधये लोकेश मान्यं मौज्ञान धनिष्ये श्री मदं तमः। तत्र उसके बाद प्रतिविधिं सम्यक्, तो भगवान ने सोचा इसका प्रतिकार करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। अब जो इंद्र ने किया है कैसे करना चाहिए, आत्मयोगेन साधये, तो मैं अपनी आत्मशक्ति से मेरी योग शक्ति का प्रयोग करूंगा, और उस व्यक्ति को, इंद्र को, जो कि लोकेश मानिनाम, ऐसे देवता गण जो अपने आप को ईश मानते हैं, समस्त लोगों के ईश मानते हैं, मोह्या, क्योंकि वो कभी कभी मूर्खता के शिकार बन जाते हैं, मूढ़ बन जाते हैं कभी कभी मेरे देवतागण भी, तो लोकेश मान नाम मौर्य धनिष्य श्री मदम तमह, तो उनके ऊंचे पद और ऐश्वर्य का जो मद हुआ है, जो पागलपन हुआ है, उसका मैं नाश करूंगा हनिष्ये। जब किसी व्यक्ति को कोई ऊंचा पद मिलता है तो उसे ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो उस पद को शोभा नहीं देता। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई पद है, इसलिए हमें देखना चाहिए कि जितना ऊंचा हमारा पद है समाज में, उतनी ज्यादा हमारी जिम्मेदारी होती है। केवल ऊंचा पद प्राप्त करने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता, ये गुणों की बात है। चाणक्य नीति में ऐसे कहा गया है कि गुणैः उत्तमतां याति नोच्चैरासन संस्थिताः प्रासाद शिखरस्थोऽपि काकः किं गरुडायते। गुणैः उत्तमतां याति, हम उत्तमता यानी महानता को याति प्राप्त करते हैं गुणों से, गुणैः। तो महानता के लक्षण क्या है? गुण है। न उच्च आसन संस्थिता, केवल ऊंचे पद को प्राप्त करने से महान नहीं बनते। तो कैसे बनते हैं? गुणों को प्राप्त करके। वैसे गुण हमारे अंदर होने चाहिए जिससे कि हम महान कहलाएंगे। प्रासाद शिखर स्तोपी काकह किं गरुडायते। प्रासाद मतलब छत के ऊपर बहुत ऊंचे स्थान में, प्रासाद शिखर स्तोपी उसके शिखर के ऊपर कोई अगर काक या कौवा बैठता है तो क्या वो गरुड़ बन जाता है? काका है कि गरुड़ आए थे। वैसे गरुड़ ऊपर ऊंचे स्थान में बैठते हैं, कौवा जाके उस स्थान में बैठता है तो कौवा तो गरुड़ नहीं बनता ना, कौवा तो कौवा ही होता है। केवल स्थान में बैठने से क्या हुआ? गरुड़ के गुण होने चाहिए उस कौवे में, तब वो गरुड़ कहलाएगा। केवल ऊंचे स्थान में जाके बैठा कौआ और कहे कि मैं गरुड़ हूं तो ये तो नहीं होगा। बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि एक जैकॉब, जैकॉब को क्या कहते हैं, सियार, सियार, एक सियार था। तो चलते चलते गांव में वो एक नीले रंग के रंग का पात्र पड़ा था, कोई धोबी वगैरह ने कुछ किया होगा कुछ कपड़े को रंग देने के लिए, तो उसमें वो गिर पड़ा और उसका सारा शरीर का रंग नीला हो गया। तो बाहर आया और निकला, वो तो अपने आप को देख नहीं पाया, लेकिन दूसरे लोग देखने, सारे पशु देखने लगे, अरे ये कौन आ गया, नया पशु आ गया, ये तो राजा है, जंगल का राजा है, नीला नीला रंग। तो सारे शेर हाथी अन्य की तो बात दूर है, सभी लोग ने उसको राजा मान लिया। सोचा अच्छी बात है, तो राजा का पद उसको मिल गया, अच्छा सिंहासन वगैरह दिया गया और वो बैठा सिंहासन के ऊपर, दो चार दिन ऐसे काम तो चला भी राजा का। और फिर उसने अचानक एक दिन, एक रात ऐसे हुआ कि कहीं दूसरी जगह सियर था, सियर की आवाज सुनी तो आदत से मजबूर, तो इसने भी आवाज की सियर की, और फिर सारे पशुओं को पता चला, अरे ये तो कोई राजा वाजा नहीं है, तो हमारा सियर ही है। तब वो उसको भगा दिया वहां से। तो उसके अंदर राजा या जंगल के राजा के गुण नहीं थे, केवल कोई ऐसी दैव से परिस्थिति निर्माण हो गई जिससे कि उसे लोगों ने सोचा कि ये महान है, उसे महान पद में बिठा दिया, लेकिन महानता आई नहीं उसके अंदर, जंगल के राजा के गुण नहीं। उसी प्रकार स्वरूपा जी कहते हैं कभी कभी कि एक कुत्ते को भी अगर आप राज सिंहासन पर बिठाएंगे और सर पर मुकुट रखेंगे तो क्या वो राजा हो जाता है? उस सिंहासन पर बैठे हुए राजा को, कुत्ते को आप एक हड्डी दिखाइए तो कुत्ता क्या करेगा? सिंहासन से कूद कर वो हड्डी के पीछे जाएगा, सिंहासन एक तरफ मुकुट तीसरी तरफ दूसरी तरफ, वो हड्डी के ऊपर हड्डी को पाने के लिए जाएगा। तो उसका असली गोल जो है उस तरह पता चल जाए कि क्या है, और एक बात रूपा जी कहते हैं, जब मक्खी राजा के शरीर के ऊपर बैठी हुई होती है, जबकि राजा सिंहासन पर बैठा होता है, मक्खी भी सिंहासन पर है, लेकिन मक्खी में और राजा में बहुत अंतर है। हालांकि दोनों एक ही स्थान में स्थित हैं, तो उसी प्रकार से स्थान को पाना, ऊंचे पद को पाना, इससे व्यक्ति महान नहीं बनता। गुण उस प्रकार के होने चाहिए। तो यहां हम देखते हैं कि आजकल ये प्रजातंत्र है, इसमें लोग ऊंचे पद को पहुंच तो जाते हैं, लेकिन योग्यता जो होनी चाहिए उस पद के लिए वो अनेकों बार नहीं होती लोगों में। जो योग्यता चाहिए वो गलत तरह की योग्यता चाहिए आजकल वहां उस पद को प्राप्त करने के लिए। तरह तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। हमने सुना है कि आजकल लोग क्या नहीं करते हैं उस पद को प्राप्त करने के लिए, सब गलत चीज है। और अगर आप कि वो गलत तरह की योग्यता नहीं है तो शायद आप वो पद को प्राप्त नहीं कर पाए। तो कलयुग में सब कुछ उल्टा हो गया है। तो इंद्रदेव इस प्रकार से अभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को देखने वाले हैं थोड़े ही समय में। नहीं सद्भाव युक्ता नाम सुराणाम विस्मय मत्तो सताम मान भंग प्रशम आयोप कल्पते। जब देवता में सतोगुण में है और ऐसे सतोगुण में स्थित होकर ये ईश मानी ना, ये ईश मानने का जो पागलपन है, ये मेरे प्रिय भक्त इन्हें भी कहते आ गया, ये तो ठीक नहीं है। और जब मैं ऐसे देवताओं को या व्यक्तियों का मान भंग करता हूं तो उनको मैं वास्तव में राहत देता हूं, उनकी पद कृपा करता हूं, ये मान का बोझ उनके कंधों से उठा देता हूं और वो हल्के हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देवता जन वास्तव में सतगुणी होने के नाते उनको ये सब शोभा नहीं देता, ये तो असुरों का काम है, असुर ऐसे घमंडी हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रदेव ऐसे कैसे बनते हैं, इंद्रदेव को तो नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन नाथम मत परिग्रहम गोपये स्वात्म योगे न सोयम में व्रत आहित मत शरणम गोष्ठम। ये जो गो समूह है, ये जो गवों का, ये ग्वाल ग्वाल बालों का और गोपों का समूह है जो मेरा शरण ग्रहण कर चुकी है, मन नाथम मत परिग्रहम मुझे नाथ समझ के, मुझे प्रभु समझ के, मत परिग्रहम मुझे अपने परिवार का एक सदस्य समझ के, गो पड़े तो मैं ऐसे रक्षा करूंगा स्व आत्मयोग लेना और मेरे योग शक्ति से, सह अयम में व्रत आहितः मैं व्रत लिया है कि मैं मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं अब ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए मेरी योग शक्ति का प्रयोग करूंगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कौन्ते प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति, कि अर्जुन जाके घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। तो भगवान वचन देते हैं कि जो भी उनके शरण में आते हैं उनके लिए निर्भयता निश्चित है। सकृत एवं प्रपन्न युक्त बात में पीछे जाते अभयम सदराम ये तंत्र ममा। श्री रामचंद्र कहते हैं जबकि विभीषण उनके शरण में देने के लिए आते हैं, जब हनुमान और अन्य के मन में से अन्य बादलों के मन में संशय होता है कि ये विभीषण यहाँ क्यों आए हैं, हो सकता है कोई षड्यंत्र है, कोई जासूसी करने आए हैं, पर श्री राम ने कहा नहीं, ये मेरे शरण में आया है इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मैं करूंगा क्योंकि ये मेरा वचन है। व्रतम एतत् ये मेरा व्रत है, मैं उनको अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तत्सतम मम, मैं उनको अभय जो है निर्भयता प्रदान करूंगा अगर एक बार भी कोई मेरे शरण में इस प्रकार से आता है। तो भगवान श्री कृष्ण अब तैयार हुए। भगवान कृष्ण तो पूरी तरह से समर्थ हैं, तो भगवान के अलावा और कौन इन ब्रजवासियों की रक्षा कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि किस प्रकार से रक्षा की जाए, किस प्रकार से मेरी आत्मयोग का प्रयोग किया जाए। फिर भगवान श्री कृष्ण एक निष्कर्ष पर पहुंचे और आगे चल के श्री कृष्ण ने कैसे रक्षा की ब्रजवासियों की, वो हम कल शाम को सुनते हैं। ठीक है, तो अब हम एक भजन गाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करेंगे। तो दो या तीन भक्तों के बीच में ये एक कागज रखिए, क्योंकि कागज थोड़े कम है।
Thank you. Krishna Nirjanjana Jaya.
लंबी कथा है, भागवत की कथा है कि जब शिव जी ने एक मयर, उनके शिष्य हुए उनके उपासक मयर दानव ने एक शहर बनाया था और जिसमें असुर लोग निवास करते थे, शिव जी रक्षा कर रहे थे। तो भगवान श्री शिव जी ने भी रक्षा की थी, जिसको उनका नाम हुआ त्रिपुरा। तो भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को भी हरा दिया था, तो इसलिए उनका नाम है ऐसे दिया गया है। तो शिव जी से भी श्रेष्ठ है। तो ये कौन सी पंक्ति है? ये साफ से है। गिरधारी मुरारी पुरारी परम, मतलब शिव जी से भी वो श्रेष्ठ देव है। उनका नाम है मुरारी और गिरिधारी। और कोई प्रश्न? कृपया स्पष्ट लिखिएगा, आपके लिए भी कुछ समझ नहीं आती है कभी कभी। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, सब देवता भगवान की वंदना कर रहे थे, फिर हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को इंद्र पहचान नहीं पाए? यह तो आश्चर्य की बात है ना। देवता घर भी भूल जाते हैं और भगवान भी अपनी लीला के लिए कभी कभी ऐसे करते हैं। हाँ, देवता घर तो आए थे सब विद्याधर किन्नर लोग से सभी आए थे, देवकी की प्रदक्षिणा करके गए, राह देख रहे थे, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐश्वर्य ऊंचा पद ऐसे होता है कि व्यक्ति को क्रम में डाल देता है। समझ में नहीं है, थोड़ा स्पष्ट लिखिएगा। भगवान के सामने जाकर हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसा भाव हमारा होना चाहिए और मन से बुरे विचारों को त्याग कर उन्हें कैसे बुलाना चाहिए? हाँ, तरह तरह की प्रार्थना है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हम भगवान के सामने आते हैं तो भाव से, सही भाव से, हृदय से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात कि भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। तीसरी बात कि हमें कोई प्रार्थना करनी चाहिए, और विशेष करके जो पूर्व आचार्यों ने की हुई है, जैसे ब्रह्म संहिता है या श्रीमद् भागवत की कई प्रार्थनाएं हैं, इनको हमें दोहराना चाहिए। या तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, अगर कुछ नहीं तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र तो कह सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, कृपया हमें आपकी सेवा में सदैव रखिए। तो भगवान के सामने जाकर अवश्य हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी अनर्थ हैं, उनका आप नाश कर दीजिए और आपके प्रति शुद्ध भक्ति की भावना को जागृत कीजिए। हम ऐसे भी प्रार्थना कर सकते हैं कि सदैव हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए, सदैव आपके सेवा में हमें रहने का अवसर दीजिए। ऐसी सारी प्रार्थना है। तो जब हम भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और पढ़ते हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में, तो हमें पता चलता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। नम्रता को कैसे पाना चाहिए? सच्ची नम्रता को कैसे पाया जा सकता है? ये सबसे मुश्किल बात है इस दुनिया में, जहां सभी लोग ईशमानी, सभी लोग ईशमानी हैं। भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ही वास्तव में हमें सही नम्रता दिला सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, मैं भी हृदय के समान हूँ और मेरे हृदय में भी बहुत घमंड है जितना इंद्र का था, तो मेरा भी मान भंग कर दीजिए और मुझे भी नम्र बनाइए। और इस प्रकार से भगवान भी वो हृदय का ऑपरेशन करेंगे उनकी कृपा से और हमें नम्र बनाएंगे। तो भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से यह संभव है। तो ये एक उत्तर है कि भगवान से, भगवान के नाम से तीव्र प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात, भक्तों से ऐसी प्रार्थना कीजिए करनी चाहिए और भक्तों के बीच में रहकर हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। भक्तों के बीच में विशेष करके हमें घमंड और अहंकार को त्यागने का पूरा प्रयास करना चाहिए। भक्तों के बीच में रहकर इन चीजों को त्यागना ये आसान भी है और नहीं भी है। अगर हम चाहें तो बहुत आसान हो सकता है। बाहर की दुनिया में कई विचार रह सकते हैं, हम ऐसा करेंगे तो लोग गलत फायदा उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भक्तों के समाज में तो ऐसा नहीं है। और अंततः जो नम्र पद स्वीकार करता है, जीत उसकी ही होती है अंत में भगवान की दृष्टि से। इसलिए हम अगर वास्तव में, अगर भले उतने नम्र हृदय से है नहीं, लेकिन नम्र होने का प्रयास हृदय से कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए काफी है। भगवान बाकी सब मदद कर देंगे। आखिरी प्रश्न अगर कोई है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी हाँ जी माइक लीजिए वहां पर। हरे कृष्ण।
हम अपने आप को देवराज शंकर से तुलना कैसे करें कि वो ठीक है या हम ठीक है? हम तो भगवान कृष्ण की सत्ता को नकारते नहीं है। वो एक पारिजात पुष्प के लिए भगवान से युद्ध करते हैं और भगवान अगर हमारे पास पारिजात मांग रहे हैं और हमारे पास, तो हम तो कहें प्रभु पूरा बगीचा ले जाओ। तो हम मृत्यु लोक के वासी देवताओं से कैसे, और कोई भी बात इंद्र की कोई बुद्धिमत्ता कोई कहानियां समझ में नहीं आ रही, एक भी बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं करते वो। हम लोग मृत्यु लोग के वासी उनसे ठीक है या वो हमसे ठीक है? अरे
देखिए इंद्र देव, इंद्र ये बहुत महान पद है, कोई विशेष व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति नहीं है। परंतु जैसे हम बार बार बताते आए हैं पिछले दो तीन दिनों में कि ऐश्वर्य पद आदि इनको प्राप्त करना ये कभी कभी बहुत बड़ा बोझ बन जाता है, और इसलिए व्यक्ति हृदय से भगवान को पुकार नहीं सकता, हृदय से भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसी चीजों से घमंड आ जाता है जिससे कि फिर हम भगवान, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कभी कभी कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री एन मान मदह कुमान नैवाहत्य विधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचर। वो कहते हैं कि हे प्रभु, चार प्रकार की चीजें हैं, चार वस्तुएं हैं जो व्यक्ति को पागल बना देती हैं दुनिया में। जन्म, ऊंचा जन्म, ऐश्वर्य धन, श्रुति बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा विद्वान बन जाना, बहुत ज्यादा विद्या हासिल कर लेना, और श्री सौंदर्य। ये चार चीजें जिन व्यक्ति के पास हैं, इनमें से एक भी कोई हो तो एक माना मद कुमार मद पागलपन घमंड आ ही जाता है। न एव अर्हति अभिधातुम पै त्वाम अकिंचन गोचर, इसलिए ऐसे व्यक्ति आपके पास हृदय से आ नहीं सकता। तो ये सत्य है। तो ये सब सिखलाने के लिए भगवान ऐसी अपने भक्तों को परिस्थिति में डालते हैं, इंद्रदेव जैसे भक्तों को, ताकि हम सब सीखे कि हम कहाँ इंद्र कहाँ, इंद्र का पद कितना ऊंचा, फिर भी ऐसे हो सकता है इंद्र के साथ तो हमारे साथ कितना और हो सकता है और होते रहता है, इसलिए हमें कितना सावधान रहना चाहिए। तो ये सब सिखलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीलाएं करते हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण लेके सिखाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे उदाहरण लेते तो मन में बैठती नहीं है बात। बड़े बड़े उदाहरण लेके, ऐसे महान व्यक्तियों के उदाहरण लेके वो हमें उपदेश देते हैं। तो इस दृष्टि से हमें समझना चाहिए। तो अभी हम कीर्तन करते हैं, आरती का समय हो गया, दर्शन
थोड़े सूचना है।